मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 30 जुलाई 2019 है और आज के इस afeis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपसे इस विषय पर बात करने जा रहा हूं कि हमारे पास बुद्धि होती है या यूं कह लीजिए कि आप बहुत ब्रिलियंट होते हैं पढ़ाई में भी और वैसे भी, लेकिन क्या बुद्धि का होना ही अपने आप में पर्याप्त है या कि उससे आगे भी कुछ और चाहिए जिसे आप बुद्धिमत्ता कह सकते हैं। यानी कि आज के इस ऑडियो के शीर्षक को आप नाम दे सकते हैं बुद्धि नहीं बुद्धिमत्ता। और इस बात को आप सबके सामने रखने के लिए मैं सुपर 30 फिल्म के एक उदाहरण का दोस्त इस्तेमाल करने जा रहा हूं और खासकर मैंने इस उदाहरण को इसलिए चुना है, यह सोच कर चुना है, मैं मान कर चल रहा हूं कि जिस तरह से यह फिल्म पॉपुलर हो रही है, सुपर हिट हो रही है, तो आपने भी इसे जरूर देखा होगा और अगर आपने नहीं देखा हो तो एक बार देखिए, कुछ बहुत अच्छी चीजें इसमें आपको मिलेंगी। लेकिन इससे पहले कि मैं इस फिल्म के बारे में कुछ बात करूं, एक बात मुझे लगता है कि बहुत क्लियर कर देना चाहिए। चूंकि यह फिल्म बायोग्राफिकल फिल्म है, मतलब बेस्ड है कह लीजिए, आनंद कुमार जो सुपर 30 के संस्थापक रहे हैं, कहा जाता है कि उनकी जीवनी पर आधारित है। सच पूछे तो मैं यहां उनके जीवनी के प्रसंग की चर्चा बिल्कुल नहीं करने जा रहा हूं, न ही मेरा इस बात से कोई लेना देना है कि जो फिल्मों में दिखाई गई बातें हैं वो कितनी सही हैं कितनी गलत हैं। यानी कि मेरे लिए यह सुपर 30 फिल्म जिस रूप में मैं बात करने जा रहा हूं पूरी तरह से एक फीचर फिल्म है, कह लीजिए एक कहानी है, मैं इसी रूप में ले रहा हूं। मतलब ये नहीं है कि यह पूरी तरह से झूठ है या बायोपिक नहीं है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं शुरू से स्पष्ट कर देना चाह रहा हूं कि मेरी बातों को उस तरीके से आलोचना के रूप में न लिया जाए, मैं तो केवल उससे एक प्रसंग उठा करके और अपनी बात आपके सामने रखना चाह रहा हूं, है ना। तो इसके सही गलत झूठ इनसे कोई लेना देना नहीं है। मित्र तो आइए हम एक छोटे से घटना को याद करने की कोशिश करते हैं जो बहुत ही टची है, यानी कि कह लीजिए बहुत ही भावना से भरी हुई घटना है। आप देखते हैं कि उसमें जो स्टूडेंट है, जो मैथमेटिशियन है आनंद, उनका दाखिला बकायदे कैम्ब्रिज में हो जाता है, लेकिन वो वहां नहीं जा पाते। क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि उनके पास धन नहीं है, है ना। वो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं शिक्षा मंत्री से और दूसरों से, लेकिन उनके पिता कोशिश में लगे रहते हैं लेकिन कुछ नहीं हो पाता है। और दुर्भाग्य से इसी बीच उनके पिता का निधन हो जाता है, राइट। अब जैसे ही पिता का निधन होता है तो अब आप देखें कि फिल्म क्या कहानी आगे बढ़ाती है, किस रूप में, कि फिर आनंद कुमार को हम सीधे सीधे पापड़ बेचते हुए देखते हैं, है ना। वो घर में पापड़ बनाते हैं और फिर साइकिल के पीछे अपना पापड़ का टोकरा लेकर के और गली गली में घर घर जाकर के वो पापड़ बेचते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो कोई गलत काम कर रहे हैं, नॉट एट ऑल, कोई भी काम गलत नहीं होता अगर पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी अच्छी भावना के साथ की जाए। तो यहां जो बुद्धि और बुद्धिमत्ता का मैं जो आपको अंतर बताने जा रहा हूं वह इसी उदाहरण से निकल कर आता है। अब फिल्म में जो आनंद कुमार हैं, आप देखिए कि वो सामान्य से नहीं है, मैथमेटिक्स में तो उनका कमाल ही है, सोचिए। दूसरी तरफ हम ये भी पाते हैं कि वो पटना में रह रहे हैं, यानी पटना के चलिए एक मोहल्ले में रह रहे हैं, यानी कि एक स्टेट की राजधानी में रह रहे हैं, यानी कि स्थान की भी सीमा उनके पास नहीं है। और आप देखिए कि छुटपन से या कह लीजिए कि जब वो थोड़े से बड़े हो गए हैं तब भी उनमें डैशिंगनेस बहुत है, मतलब ये नहीं कि बहुत संकोची हैं, बहुत छुप करके रहने वाले हैं, वो डैशिंग पर्सन है। और उनके डैशिंग पर्सन होने का प्रमाण इस बात से मिलता है कि वो बकायदे पटना से एक दिन BHU की लाइब्रेरी अटेंड करने जाते हैं। आप याद करने की कोशिश कीजिए कि वो लाइब्रेरी में जाकर के कुछ सॉल्व कर रहे हैं और फिर जो लाइब्रेरियन आते हैं और उनको डांट करके भगा देते हैं। और इसके बाद जब उनको पता लगता है, वहां के जो व्यक्ति हैं बताते हैं कि भैया जो जर्नल तुम पढ़ने जा रहे हो, ये बड़ी पढ़ने आते हो, ये बड़ी महंगी है, अगर तुम इसमें कुछ भेज दो तुम्हारा छप जाएगा तो तुम्हारे घर में ये फ्री आता रहेगा। वो ऐसा करता है, उसका आर्टिकल छप जाता है, और बकायदे इस आर्टिकल को फिर वो लाइब्रेरियन को दिखाते भी हैं। मतलब ये इस बात को प्रमाणित करता है कि वो अपने को सीमाओं में कैद नहीं रखते, मतलब उनमें इतनी डैशिंगनेस है, उनमें इतना एक्टिवनेस है, वो अपने आप को इतना सक्रिय रखते हैं कि पटना से बनारस सिर्फ लाइब्रेरी अटेंड करने जाते हैं, राइट। तो ये उनकी ऊर्जा को बताता है, उनके विजन को बताता है, उनके अंदर की ताकत को बताता है, यानी कि वो संकीर्णता के दायरे में कैद नहीं है, हर रूप में वो एक्टिव है और जबरदस्त रूप से एक्टिव है। अब मेरा यहां जो सवाल है वो ये है कि पिता के निधन होने के बाद वो पापड़ बेचते हैं, सवाल यह है कि वो ऐसा क्यों करते हैं। बस मेरा यही एक ही प्रश्न है कि वो ऐसा क्यों करते हैं। अब अगर हम परिस्थितियों का मूल्यांकन करें तो आप देखिए कि वो पटना में हैं और कुछ ही दिनों के बाद बकायदे लल्लन प्रसाद मिलते हैं, जो 10 साल पहले बकायदे उन्होंने भी मेडल लिया था, गोल्ड मेडल लिया था रामानुजन जी के नाम का, और वो उन्होंने एक बहुत बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल रखा है, बहुत बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, यानी कि यह जो समय है यह कोचिंग इंस्टीट्यूट का समय था, यानी कि पढ़ाने का काम भी किया जा सकता था और आनंद कुमार इस काम को भी चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये बात मैं इसलिए स्पष्ट कर रहा हूं कि क्योंकि दिमाग में ये बात आ सकती है कि भैया उस समय कोचिंग वगैरह नहीं हो रही होंगी तो वो क्या करते, लेकिन उन्होंने दूसरे विकल्पों को न लेकर के पापड़ का विकल्प चुना। ये कितना सही है कितना गलत है प्लीज आप इस पर मत जाइए, हम केवल फिल्म की कहानी तक अपने आप को सीमित रखते हैं। जब आप इसका मूल्यांकन करेंगे तो आपको लगेगा कि नो डाउट कि वो बहुत ब्रिलियंट हैं, एक्टिव भी हैं, जिसकी चर्चा मैंने की, वो बहुत ही सक्रिय हैं, वो सीमाओं में कैद रहने वाले स्टूडेंट नहीं है। यहां क्यों वो सीमाओं में कैद हो गए, यहां उन्हें दूसरी चीजें क्यों नहीं दिखाई दी कि मैं ये भी कर सकता हूं या मेरे अंदर जो टैलेंट है मैं इस टैलेंट का बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूं, जो बाद में वो करते हैं और उसी ने उन्हें इस स्तर पर पहुंचाया है कि आज उनकी फिल्म उनके जीवन पर बायोपिक बन रही है। तो इस पर मुझे लगता है कि हम सबको बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए, व्यक्ति को हटा करके कहानी पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों, जो मैं आप सबसे कहना चाह रहा हूं इसके माध्यम से, वो है कि परिस्थिति चाहे कोई भी क्यों न हो, बहुत दुर्भाग्यजनक हो सकती है, बहुत जटिल हो सकती है, बहुत दुखद हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन उन परिस्थितियों में विकल्पों की कमी नहीं होती, बहुत से विकल्प मौजूद होते हैं। हमें दिखाई क्यों नहीं देते, हम उसमें से अपने लिए और बेहतर विकल्प का चयन क्यों नहीं कर पाते, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस सवाल का उत्तर मैं जो अपनी तरफ से समझ पा रहा हूं, जो मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं, जो मैं देने जा रहा हूं, वह है हमारे विचार। हमने किस तरह के विचारों से अपने दिमाग को भर रखा है, क्योंकि अगर हमारा दिमाग विचार शून्य, बुद्धि से तो भरा हुआ है लेकिन अगर वो विचार शून्य है तो विकल्पों को नहीं देख पाता, या यूं कह लीजिए कि बहुत दुखद परिस्थितियां हैं, दुखद परिस्थितियों ने हमारे आंखों में आंसू भर दिए हैं और लगातार हमारी आंखें डबडबाई हुई हैं, यूं कह लीजिए कि बुद्धि की आंखें डबडबाई हुई हैं, तो डबडबाई हुई आंखों को सामने उपस्थित विकल्प दिखाई ही नहीं देंगे। तो दोस्तों मेरे कहने का कुल मतलब इतना है, याद रखिए, हमेशा कोशिश कीजिए कि कैसे आप अपने विचारों को मजबूत बनाते चले जाएं, एनलार्ज करते चले जाएं, जैसे हमारी माताएं तवे पर रोटियां सेकती हैं, उलट पलट कर रोटियां सेकती हैं, ऐसा नहीं कि एक बार डाल दिया और निकाल दिया, उलटती पलटती हैं तब रोटियां अच्छी तरह से सिकती हैं, हमें भी अपने विचारों को इसी तरह से लगातार उलट पलट करके सेकते रहना चाहिए और फिर आप देखिए कि परिस्थिति कितनी भी भयावह क्यों ना हो, आपके सामने वो ऐसा विकल्प पेश करेगी या कई विकल्प ऐसे पेश करेगी जिनमें से एक आपके लिए सर्वोत्तम होगा और आप उसका चयन कर लेंगे। तो दोस्तों आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी और बातें करेंगे, तब तक के लिए आप सबसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।